नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहे इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। अब तक 1,40,00,000 उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और प्रतिदिन धोखाधड़ी से संबंधित 2,000 घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच लोकसभा में आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ऐप सुरक्षित है और इसका उद्देश्य केवल साइबर अपराध से लोगों को बचाना है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के कारण 23 लाख से अधिक शिकायतों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई गई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए ये प्रणाली 2021 में शुरू की गई थी। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू है। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये कोई नया कानून नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि ये उपकर भी नहीं है बल्कि ये एक उत्पाद शुल्क है जो GST लागू होने से पहले लगा करता था।
When GST was introduced in 2017,
2017 में जब GST लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अपने उत्पाद शुल्क के अधिकार छोड़ दिए और इसे GST परिषद को दे दिया ताकि परिषद क्षतिपूर्ति उपकर लगा सके। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के स्थान पर वसूला जाने वाला क्षतिपूर्ति उपकर GST में आने के बाद से शुरुआती वर्षों में क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को दिया गया।
For the initial years, when they come into the GST,
विधेयक के अंतर्गत कच्चे तंबाकू, बने हुए तंबाकू से बने उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में उच्च वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक के बारे में सरकार चिंतित है और प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। राज्यसभा में मणिपुर में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 अपनाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा में उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों के साथ कई बैठकें की गई, जिसके बाद दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलाने में कमी आई। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज लगभग 64% लोग कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। इससे भारत दुनिया में लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर बल दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर दिव्यांग जनों के लिए सम्मान, सुगम्यता और समान अवसर सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांग जनों ने अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। इस अभियान में 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। रायपुर में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। भारत के 359 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 4 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम ने 110 रन की शतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।